मुझे लगता है कि कपड़े गंदे हों तो उन्हें साबुन और पानी से बड़ी आसानी से धोया जा सकता है।
हाँ, वो तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते ही हैं।
बिल्कुल, मतलब सतह की गंदगी हटाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए।
अच्छा, कैसी स्थिति?
अगर कोई रासायनिक पाउडर गंदा हो जिसमें अशुद्धियां उसके कण कण में बिल्कुल अंदर तक रची बसी हो तो उसे कैसे धोएंगे?
ये एक दिलचस्प सवाल है।
क्योंकि देखिए, किसी पाउडर को साबुन से तो रगड़ा नहीं जा सकता ना। रसायन विज्ञान की दुनिया में इस तरह की गहरी गंदगी को साफ करना किसी जादू से कम नहीं लगता।
अरे, और ये जादू असल में पूरी तरह से विज्ञान के कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है।
सही कहा।
आज हम जिस स्रोत सामग्री का ये विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं वो धुले चैरिटेबल सोसाइटी के ARA कॉलेज ऑफ फार्मेसी धुले का सेकेंड ईयर BPharm के लिए तैयार किया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब मैनुअल है।
हाँ, मैंने इसे पढ़ा है।
इसे डॉक्टर आनंद मुंद्रा द्वारा बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है, और जो भी लोग इसे पढ़ना चाहें ये smilingpharmacy.com पर अध्ययन के लिए उपलब्ध है।
तो इस गहन चर्चा का हमारा मुख्य मिशन रिक्रिस्टलाइजेशन यानी पुनर्क्रिस्टलीकरण की इस अद्भुत प्रक्रिया को गहराई से समझना है।
बिल्कुल।
हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे केवल डिस्टिल्ड वाटर, जिसे हम आसुत जल भी कहते हैं, और तापमान के उतार चढ़ाव के सही उपयोग से एक मटमैले अशुद्ध बेंजोइक एसिड को एकदम शुद्ध क्रिस्टल में बदला जा सकता है।
हाँ, और वो भी रंगहीन और सुई के आकार के क्रिस्टल में।
बिल्कुल, एक अशुद्ध पाउडर को वापस उसके सबसे शुद्ध रूप में ढलते हुए देखना सच में रोमांचक है।
चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं।
देखिए, इसे केवल एक साधारण लैब प्रयोग मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी।
अच्छा, ऐसा क्यों?
क्योंकि यह ठोस कार्बनिक यौगिकों यानी सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को शुद्ध करने की दुनिया की सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण तकनीक है।
मतलब पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, जब भी किसी ठोस रसायन को उसके सबसे शुद्ध रूप में प्राप्त करना होता है ना, तो पूरी दुनिया की प्रयोगशालाओं में इसी तकनीक को आधार बनाया जाता है।
तो ये काम कैसे करता है? मतलब किसी भी चीज को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल तो समझ आता है, लेकिन इस मैनुअल को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मुख्य भूमिका पानी की नहीं है।
तो आपको क्या लगता है मुख्य भूमिका किसकी है?
मुझे लगता है कि यहाँ सारा खेल तापमान का है।
ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
सच में?
हाँ, रिक्रिस्टलाइजेशन का पूरा विज्ञान और इसका मूल सिद्धांत इसी एक तथ्य पर टिका है कि किसी भी पदार्थ की घुलनशीलता, या जिसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, वो तापमान के साथ बदलती रहती है।
अच्छा, तो तापमान से सॉल्युबिलिटी कम ज्यादा होती है?
एकदम सही। बेंजोइक एसिड, जिसका रासायनिक सूत्र C6H5COOH है, इसके आंकड़े इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है।
हाँ, डॉक्टर मुंद्रा के मैनुअल में दिए गए डेटा पॉइंट इस कहानी को बहुत स्पष्ट रूप से बयां करते हैं। मैंने वो आंकड़े देखे हैं।
तो जहा बताइए, क्या कहते हैं वे आंकड़े?
वो आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। 25 डिग्री सेल्सियस यानी लगभग हमारे कमरे के तापमान पर 100 मिलीलीटर पानी में सिर्फ 0.34 ग्राम बेंजोइक एसिड ही घुल पाता है।
मतलब ये मात्रा तो ना के बराबर हुई।
बिल्कुल, लेकिन जैसे ही हम तापमान बढ़ाकर 50 डिग्री सेल्सियस करते हैं, ये घुलनशीलता बढ़कर 0.95 ग्राम हो जाती है।
यानी लगभग 3 गुना बढ़ गई।
हाँ, और 75 डिग्री सेल्सियस पर ये 2.2 ग्राम तक पहुंच जाती है।
और असली बदलाव तब आता है जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है।
उबलते पानी में?
हाँ, उबलते पानी में इसकी घुलनशीलता सीधे 6.8 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर हो जाती है।
अरे वाह, मतलब कमरे के तापमान के मुकाबले उबलते पानी में ये लगभग 20 गुना ज्यादा घुलनशील हो जाता है।
बिल्कुल। अब अगर हम इसे आणविक स्तर पर यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें, तो जब पानी को गर्म किया जाता है तो पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है।
मतलब वो तेजी से हिलने डुलने लगते हैं।
बिल्कुल, वे तेजी से भागने लगते हैं और बेंजोइक एसिड के ठोस ढांचे को तोड़कर उसे अपने अंदर समाने के लिए ज्यादा जगह बना लेते हैं।
ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे रसोई में चाशनी बनाते समय होता है।
अच्छा, कैसे भला?
देखिए, ठंडे पानी में ढेर सारी चीनी घोलने की कोशिश करने पर चीनी नीचे बैठ जाती है, वो घुलती ही नहीं है।
हाँ, ये तो सभी ने देखा होगा।
लेकिन गैस चालू करते ही वो सारी की सारी चीनी पानी में गायब हो जाती है और जब वो चाशनी ठंडी होती है तो चीनी वापस जमने लगती है, उसके क्रिस्टल बनने लगते हैं।
क्या बात है, एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने।
मुझे लगता है बेंजोइक एसिड के साथ भी यही हो रहा है। ठंडे पानी में ये नखरे दिखाता है लेकिन उबलते पानी में ये पूरी तरह घुल जाता है।
बिल्कुल, और घुलनशीलता में ये जो भारी अंतर है ना, यही अशुद्धियों को अलग करने का मुख्य तंत्र है।
वो कैसे, अशुद्धियां कैसे अलग हो जाती हैं?
देखिए, जब गर्म घोल को ठंडा किया जाता है तो पानी की घोलने की क्षमता वापस कम हो जाती है। पानी के अणु शांत होने लगते हैं, उनके बीच की जगह कम हो जाती है।
अच्छा, तो फिर बेंजोइक एसिड का क्या होता है?
उसे वापस बाहर आना पड़ता है, लेकिन इस बार मजे की बात यह है कि वे शुद्ध क्रिस्टल के रूप में बाहर आते हैं, अशुद्धियां पानी में ही छूट जाती हैं।
ये तो बहुत ही शानदार तरीका है, लेकिन एक सवाल है मेरे मन में।
हाँ, पूछिए।
पानी ही क्यों? मतलब दुनिया में इतने सारे तरल पदार्थ हैं, पेट्रोल है, अल्कोहल है, एसीटोन है, क्या हम किसी और चीज का उपयोग नहीं कर सकते?
ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, एक आदर्श विलायक या जिसे परफेक्ट सॉल्वेंट कहते हैं, उसका चुनाव करना रीक्रिस्टलाइजेशन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
मतलब हम कोई भी तरल पदार्थ नहीं उठा सकते?
बिल्कुल नहीं, हर तरल पदार्थ इस काम के लिए उपयुक्त नहीं होता। एक आदर्श विलायक में कुछ बहुत ही खास गुण होने चाहिए।
अच्छा, कैसे गुण?
पहला गुण यह है कि वो उबलते तापमान पर उस पदार्थ को पूरी तरह और आसानी से घोल ले,
जो कि पानी 100 डिग्री पर बेंजोइक एसिड के साथ करता ही है।
ठीक। अब दूसरा गुण यह है कि कमरे के तापमान पर ये उस पदार्थ को बहुत ही कम घोले।
ऐसा क्यों?
क्योंकि अगर ये ठंडे होने पर भी पदार्थ को घोले रखेगा तो सोचिए क्या होगा।
हाँ, फिर तो मैं क्रिस्टल कभी वापस मिलेंगे ही नहीं, वो तो घुला ही रह जाएगा।
एकदम सही पकड़े। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि विलायक का उस पदार्थ के साथ कोई रासायनिक प्रतिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए।
मतलब वो आपस में मिलकर कोई नई चीज ना बना ले।
बिल्कुल, यहाँ हमें केवल भौतिक बदलाव चाहिए, रासायनिक नहीं।
मतलब कि एक सॉल्वेंट कोई साधारण मजदूर नहीं है जो बस चीजों को इधर उधर करे।
फिर क्या है?
मुझे लगता है कि उसे एक परफेक्ट मैचमेकर होना चाहिए।
परफेक्ट मैचमेकर? वो कैसे?
एक ऐसा मैचमेकर जो रसायन विज्ञान के सख्त नियमों का पालन करे, जिससे पता हो कि कब पदार्थ को पूरी तरह अपनाना है और तापमान कम होने पर कब उसे छोड़ देना है, वो भी बिना उसका मूल स्वभाव बदले।
अरे वाह, इसे इस तरह भी समझा जा सकता है। बहुत बढ़िया उपमा है,
शुक्रिया।
इसके अलावा चौथा गुण अशुद्धियों से जुड़ा है।
अच्छा, अशुद्धियों का क्या रोल है इसमें?
विलायक ऐसा होना चाहिए जिसमें अशुद्धियां या तो पूरी तरह से घुल जाएं, ताकि जब बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल बने तो अशुद्धियां पानी में ही तैरती रह जाएं।
हाँ, और हम क्रिस्टल अलग कर लें।
या फिर अशुद्धियां बिल्कुल भी न घुलें।
ऐसा क्यों?
ताकि उन्हें गर्म अवस्था में ही छानकर बाहर निकाला जा सके। दोनों ही स्थितियों में हमारा मुख्य उत्पाद बच जाएगा।
ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है।
और अंत में, विलायक को वोलेटाइल यानी आसानी से वाष्पित होने वाला होना चाहिए।
वाष्पित होने वाला मतलब जो उड़ जाए?
हाँ, ताकि जब क्रिस्टल सूखें तो विलायक पीछे अपना कोई निशान ना छोड़े। पानी इन सभी पैमानों पर बेंजोइक एसिड के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है।
अब जब हमें सिद्धांत समझ आ गया है तो लैब में इसे हकीकत में कैसे किया जाता है ये देखते हैं।
बिल्कुल, प्रक्रिया समझना बहुत जरूरी है।
मैंने मैनुअल में देखा है कि शुरुआत में 1 ग्राम अशुद्ध बेंजोइक एसिड लिया जाता है और उसमें लगभग 75 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर मिलाया जाता है।
हाँ, और फिर इसे धीरे धीरे गर्म किया जाता है।
लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है ना, कि सारा पानी एक साथ नहीं डालना है।
हाँ, बल्कि जरूरत पड़ने पर ही थोड़ा थोड़ा गर्म पानी मिलाना है। ये बहुत जरूरी कदम है।
ऐसा क्यों है, सारा पानी एक साथ क्यों नहीं डाल सकते?
ये सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बहुत अधिक विलायक यानी अतिरिक्त पानी डाल दिया गया तो घोल बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा।
अच्छा,
विज्ञान की भाषा में कहें तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। फिर जब उसे ठंडा किया जाएगा तो बेंजोइक एसिड वापस क्रिस्टल रूप में बाहर नहीं आ पाएगा।
क्योंकि पानी में उसे घुलाए रखने के लिए पहले से ही बहुत जगह मौजूद होगी।
बिल्कुल सही, और इस वजह से सारा कीमती उत्पाद उसी पानी में खो जाएगा, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
वो कैसे?
क्योंकि घोल बन जाने के बाद मैनुअल का जो अगला कदम है ना, वो मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है।
अच्छा, ऐसा क्या लिखा है अगले कदम में?
इसमें लिखा है कि अगर घोल रंगीन है तो उसमें चुटकी भर एक्टिवेटेड चारकोल डाला जाता है और 2 मिनट तक उबाला जाता है।
हाँ।
मतलब जरा सोचिए, एक अशुद्ध चीज को साफ करने के लिए, उसे पारदर्शी बनाने के लिए हम उसमें काला गहरा चारकोल डाल रहे हैं।
हाँ, ये सुनने में थोड़ा,
ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी शीशे को साफ करने के लिए उस पर कीचड़ पोत दिया जाए।
ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन असल में ये एड्सॉर्प्शन नामक एक बहुत ही खूबसूरत रासायनिक प्रक्रिया है।
एड्सॉर्प्शन? क्या ये एब्जॉर्प्शन से अलग है?
हाँ बिल्कुल, ध्यान रहे ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, जहाँ कोई चीज अंदर तक सोख ली जाती है, जैसे एक स्पंज पानी सोखता है।
तो फिर एड्सॉर्प्शन क्या होता है?
एड्सॉर्प्शन केवल सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। एक्टिवेटेड चारकोल की सतह पर सूक्ष्म स्तर पर अनगिनत छोटे छोटे छिद्र या माइक्रोपोर्स होते हैं।
अच्छा, तो वो छिद्र क्या करते हैं?
जब इस चारकोल को रंगीन घोल में डाला जाता है तो रंग पैदा करने वाले जो बड़े और जटिल अणु होते हैं वो इन छिद्रों में फंस जाते हैं।
ओह!
चारकोल उन्हें एक चुंबक की तरह अपनी सतह पर चिपका लेता है।
तो मतलब वो काला पाउडर असल में रंग और अशुद्धियों को अपने ऊपर चिपका कर घोल को पूरी तरह पारदर्शी बना देता है?
एकदम सही, लेकिन यहाँ एक बहुत सख्त चेतावनी भी है।
कैसी चेतावनी?
मैनुअल स्पष्ट रूप से कहता है कि चारकोल केवल चुटकी भर ही डालना है।
अगर ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा?
चारकोल की सोखने की क्षमता इतनी मजबूत होती है कि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में डाल दिया गया तो सिर्फ अशुद्धियों को ही नहीं बल्कि हमारा जो मुख्य उत्पाद है ना,
यानी बेंजोइक एसिड,
हाँ वो बेंजोइक एसिड को भी अपनी सतह पर चिपका लेगा। इससे उत्पाद की भारी कमी हो जाएगी।
अरे बाप रे, तो मतलब अब हमारे पास एक उबलता हुआ घोल है जिसमें बेंजोइक एसिड घुला हुआ है और उसमें वो काला चारकोल भी तैर रहा है जिसने सारी अशुद्धियां सोख ली हैं।
बिल्कुल, स्थिति कुछ ऐसी ही है।
मैं मानकर चल रही हूँ कि अब हम इसे बस एक सामान्य छन्नी या कपड़े से चाय की तरह छान लेंगे और हमारा काम खत्म।
अरे नहीं, इतना आसान नहीं है।
क्यों, चाय की तरह क्यों नहीं छान सकते?
अगर उबलते हुए घोल को किसी सामान्य ठंडे फनल या साधारण तरीके से छाना गया तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी।
कैसी समस्या?
जैसे ही वो गर्म घोल ठंडे बर्तन या ठंडी छन्नी के संपर्क में आएगा उसका तापमान अचानक गिर जाएगा।
हाँ वो तो है,
और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, तापमान गिरते ही बेंजोइक एसिड क्रिस्टल बनने लगता है।
ओह, मैं समझ गई।
तो क्या होगा?
वो सारा का सारा बेंजोइक एसिड उसी फिल्टर पेपर पर या छन्नी में ही जम जाएगा और नीचे फ्लास्क में तो सिर्फ सादा पानी ही पहुंचेगा। सारा उत्पाद रास्ते में ही फंस जाएगा।
बिल्कुल, आप तो पूरी प्रक्रिया समझ गईं।
तो इसे रोकने के लिए क्या किया जाता है?
इसे रोकने के लिए हॉट फिल्ट्रेशन, या जिसे हम गर्म छनाई कहते हैं, उस तकनीक का इस्तेमाल होता है।
हॉट फिल्ट्रेशन, ये कैसे होता है?
इसमें एक कांच के फनल को पहले से ओवन में या भाप से गर्म किया जाता है और फिर उसमें एक फ्लूटेड फिल्टर पेपर लगाया जाता है।
एक मिनट, फ्लूटेड फिल्टर पेपर? क्या ये सामान्य गोल फिल्टर पेपर से कुछ अलग होता है?
हाँ बहुत अलग, इसे खास तरीके से मोड़ा जाता है जिससे इसमें कई सारी सिलवटें बन जाती हैं।
सिलवटों का क्या फायदा है?
इन सिलवटों की वजह से फिल्टर पेपर का सरफेस एरिया यानी सतह का क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है।
अच्छा,
इससे घोल बहुत तेजी से छनता है, उसे ठंडा होने का समय ही नहीं मिलता। उबलते घोल को तुरंत उस गर्म फनल से होते हुए एक गर्म फ्लास्क में छाना जाता है।
तो अघुलनशील अशुद्धियां और वो काला चारकोल ऊपर फिल्टर पेपर पर रह जाते हैं।
बिल्कुल, और नीचे फ्लास्क में क्या मिलता है?
एकदम साफ, पारदर्शी और शुद्ध बेंजोइक एसिड का गर्म घोल।
अरे वाह।
अब आता है वो पल जिसका हम इंतजार कर रहे थे, क्रिस्टलीकरण।
हाँ, असली जादू तो अब शुरू होता है।
फ्लास्क में जमा साफ घोल को बिना हिलाए डुलाए धीरे धीरे कमरे के तापमान तक ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है।
एकदम सही।
और फिर जब क्रिस्टल बनने लगते हैं तो उसे 10 से 15 मिनट के लिए बर्फ के पानी यानी आइस बाथ में रख दिया जाता है ताकि बचे हुए अणु भी बाहर आ जाएं।
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यहाँ रसायन विज्ञान धैर्य का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाता है।
धैर्य का पाठ? वो कैसे?
घोल को बिना हिलाए डुलाए और धीरे धीरे ठंडा करना सबसे महत्वपूर्ण बात है।
ऐसा क्यों? हम इसे जल्दी ठंडा क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि जब घोल धीरे धीरे ठंडा होता है तो बेंजोइक एसिड के अणुओं को एक दूसरे के साथ एक सटीक व्यवस्थित पैटर्न में जुड़ने का समय मिलता है। इसे विज्ञान की भाषा में क्रिस्टल लैटिस कहते हैं।
क्रिस्टल लैटिस?
हाँ, ये एक बहुत ही खास ढांचा होता है जिसमें केवल बेंजोइक एसिड के अणु ही फिट बैठ सकते हैं।
अच्छा, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी सिनेमा हॉल में भारी भीड़ का घुसना।
सिनेमा हॉल? कैसे?
देखिए, अगर सब एक साथ अंदर भागेंगे यानी अगर घोल को बहुत तेजी से ठंडा किया जाए तो लोग एक दूसरे से टकराएंगे, सीटों के बीच में कोई व्यवस्था नहीं होगी।
हाँ बिल्कुल, अफरातफरी मच जाएगी।
और उस अफरातफरी में कुछ बाहरी लोग या अशुद्धियां भी अंदर घुस जाएंगी।
क्या बात है।
लेकिन अगर गेट धीरे धीरे खुले और लोगों को आराम से अपनी सीट ढूंढने का समय मिले तो हर कोई अपनी सही जगह पर बैठ जाएगा और एक परफेक्ट व्यवस्थित ग्रिड बन जाएगा।
यह एक बहुत ही सटीक और सुंदर उपमा है। बिल्कुल ऐसा ही आणविक स्तर पर होता है।
सच में?
हाँ, धीरे धीरे ठंडा होने पर क्रिस्टल लैटिस के स्लॉट में केवल सही आकार वाले अणु ही जुड़ते हैं। अशुद्धियों का आकार अलग होता है ना, इसलिए वे इस ढांचे में फिट नहीं हो पाती
और बाहर पानी में ही रह जाती हैं।
एकदम सही। जल्दबाजी करने पर क्रिस्टल छोटे बनेंगे, उनका आकार सुई जैसा नहीं होगा और वे अपने अंदर अशुद्धियों को फंसा लेंगे।
तो धैर्य का फल सच में मीठा या यूं कहें कि शुद्ध होता है।
बिल्कुल।
अब मान लेते हैं कि फ्लास्क में खूबसूरत सुई जैसे सफेद क्रिस्टल बन चुके हैं, लेकिन वे अभी भी पानी में हैं।
हाँ, उन्हें बाहर निकालना भी एक कला है।
उन्हें बाहर निकालने के लिए मैनुअल में वैक्यूम फिल्ट्रेशन और बचनर फनल का जिक्र है। क्या ये कोई भारी भरकम मशीन है?
नाम तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसका सिद्धांत बहुत सरल है। बचनर फनल असल में चीनी मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसमें नीचे एक वैक्यूम पंप लगा होता है।
अच्छा, तो ये कैसे काम करता है?
ये एक छोटे वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। जब क्रिस्टल और पानी के मिश्रण को इसमें डाला जाता है तो वैक्यूम तेजी से सारा पानी और नमी नीचे खींच लेता है
और क्रिस्टल ऊपर फिल्टर पेपर पर रह जाते हैं।
बिल्कुल, और वो तुरंत सूखने भी लगते हैं। सामान्य छनाई में बहुत समय लगता है, लेकिन वैक्यूम इसे मिनटों में कर देता है।
इसके बाद उन क्रिस्टल्स को धोने की बात कही गई है।
हाँ, धुलाई भी बहुत जरूरी है।
मैनुअल के अनुसार उन्हें धोने के लिए 5 से 10 मिलीलीटर बर्फ जैसे ठंडे डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है।
एकदम ठंडे पानी का।
एक मिनट, मैं समझ गई।
क्या समझ गई?
और फिल्टर पेपर से बहकर नीचे चले जाएंगे, सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी।
बिल्कुल सही। ये एक ऐसी गलती है जो प्रयोगशालाओं में अक्सर नए विद्यार्थियों से होती है।
तो ठंडे पानी से सिर्फ अशुद्धियां धुलती हैं?
हाँ, क्रिस्टल की सतह पर अभी भी वो मूल पानी लगा हो सकता है जिसमें अशुद्धियां घुली हैं। ठंडे पानी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि केवल वो बाहरी अशुद्ध पानी धुल जाए, लेकिन क्रिस्टल ना घुले।
क्योंकि ठंडे पानी में बेंजोइक एसिड की घुलनशीलता ना के बराबर होती है।
एकदम सही।
तो अब क्रिस्टल धुल गए।
बिल्कुल।
अब उन्हें सुखाना है। इसके लिए उन्हें 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर एक ओवन में या डेसिकेटर में रखा जाता है। ये डेसिकेटर क्या होता है?
डेसिकेटर एक कांच का बंद जार होता है। इसके निचले हिस्से में ऐसे रसायन रखे होते हैं जो हवा से नमी सोख लेते हैं।
अच्छा, जैसे वो सिलिका जल के छोटे पैकेट्स होते हैं?
बिल्कुल। जब क्रिस्टल को इसके अंदर रखा जाता है तो ये बिना गर्मी के धीरे धीरे क्रिस्टल की सारी नमी खींच लेता है, जिससे वे पूरी तरह सूख जाते हैं।
सूखने के बाद वजन किया जाता है, जिससे परसेंटेज यील्ड या प्रतिशत प्राप्ति निकाली जाती है।
हाँ, ताकि पता चले कि हमने कितना उत्पाद बचाया।
यानी जितना अशुद्ध पाउडर लिया था उसका कितना प्रतिशत हिस्सा शुद्ध रूप में वापस मिला। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है।
बताइए।
सिर्फ सफेद और सुंदर दिखने से तो कोई चीज 100% शुद्ध नहीं मान ली जाती ना। विज्ञान तो प्रमाण मांगता है।
बिल्कुल मांगता है, और वो प्रमाण 2 मुख्य परीक्षणों से मिलता है।
कौन से परीक्षण?
थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, जिसे TLC कहते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक।
ये थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी कैसे काम करती है?
इसे अणुओं की एक रेस की तरह सोचा जा सकता है। एक कांच की प्लेट पर सिलिका का लेप होता है, उस पर उत्पाद की एक छोटी सी बूंद रखकर उसे एक विलायक में खड़ा कर दिया जाता है।
अच्छा, फिर क्या होता है?
विलायक ऊपर की तरफ चढ़ता है और अणुओं को अपने साथ खींचता है। अगर पदार्थ पूरी तरह शुद्ध है तो वो रेस में एक साथ दौड़ेगा और प्लेट पर केवल एक ही धब्बा या स्पॉट दिखाई देगा।
और अगर अशुद्ध हो तो?
अगर उसमें कोई भी अशुद्धि है तो वो अलग गति से दौड़ेगी और प्लेट पर 2 या उससे ज्यादा धब्बे दिखाई देंगे।
अरे वाह, ये तो बहुत ही स्पष्ट तरीका है। और दूसरा परीक्षण, मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट किसी भी ठोस पदार्थ की पहचान का सबसे बड़ा और अंतिम प्रमाण है। शुद्ध बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट एकदम सटीक 121 डिग्री सेल्सियस होता है।
मतलब बिल्कुल 121।
हाँ, अगर क्रिस्टल बिल्कुल 121 डिग्री पर पिघलते हैं तो समझ लीजिए आपका प्रयोग सफल रहा।
और अगर अशुद्धियां मौजूद हों तो क्या होगा? क्या वो ज्यादा तापमान पर पिघलेगा?
नहीं, तापमान कम हो जाएगा और एक व्यापक रेंज में पिघलेगा, जैसे 115 से 119 डिग्री के बीच।
ऐसा क्यों? तापमान कम क्यों हो जाता है?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अशुद्धियां उस क्रिस्टल लैटिस या ढांचे को कमजोर कर देती हैं जिसके बारे में हमने पहले बात की थी।
अच्छा,
जब ढांचा पहले से ही कमजोर हो तो उसे तोड़ने या पिघलाने के लिए कम गर्मी यानी कम तापमान की जरूरत पड़ती है।
इस पूरी प्रक्रिया में गलतियों की बहुत गुंजाइश है। स्रोत सामग्री में सोर्सेज ऑफ एरर्स यानी त्रुटियों की संभावना पर एक अलग खंड है।
हाँ, विज्ञान में छोटी सी गलती भी परिणाम बदल सकती है।
जैसे अगर शुरुआत में बहुत ज्यादा विलायक डाल दिया तो उत्पाद कम मिलेगा, या फिर अगर गर्म छनाई के दौरान फनल ठंडा रह गया तो समय से पहले क्रिस्टलीकरण हो जाएगा।
ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है।
कैसा सवाल?
वजन करने की प्रक्रिया को लेकर। अगर कोई विद्यार्थी सोचे कि वाह, मुझे तो बहुत सारा उत्पाद मिल गया, लेकिन उसने क्रिस्टल्स को पूरी तरह सुखाया ही ना हो तो क्या होगा?
तब तो उन पर मौजूद नमी या पानी का वजन भी क्रिस्टल के वजन के साथ जुड़ जाएगा।
बिल्कुल,
कैलकुलेशन करने पर लगेगा कि बहुत अच्छी प्रतिशत प्राप्ति हुई है, लेकिन असल में वो पानी का वजन होगा, जो पूरी तरह से एक मिथ्या परिणाम है।
इसीलिए हर कदम पर सटीकता, धैर्य और विज्ञान के नियमों का पालन अनिवार्य है।
आज की इस चर्चा में ये स्पष्ट हो गया कि कैसे केवल तापमान के उतार चढ़ाव, एक आदर्श विलायक और क्रिस्टल ढांचे की ज्यामिति का उपयोग करके एक मटमैला पाउडर खूबसूरत और एकदम शुद्ध सुई के आकार के क्रिस्टल में बदल जाता है।
हाँ, ये एक शानदार प्रक्रिया है।
और 121 डिग्री सेल्सियस के उस सटीक मेल्टिंग पॉइंट ने इस बात पर अपनी अंतिम मोहर भी लगा दी।
इस प्रक्रिया ने यह भी साबित किया कि अशुद्धियों को सिर्फ सतह से नहीं बल्कि आणविक स्तर पर जाकर हटाया जा सकता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा और भौतिक संपत्तियों का लाभ उठाकर।
तो इन सब का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक लैब मैनुअल का हिस्सा है?
मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ लैब तक सीमित है।
बिल्कुल, इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे विचार पर ध्यान देना जरूरी है। तापमान, घुलनशीलता और क्रिस्टलीकरण के ये सिद्धांत केवल प्रयोगशालाओं की चार दीवारों तक सीमित नहीं है।
ये सच है, ये विज्ञान बहुत व्यापक है।
जरा आसमान की ओर देखिए, कड़कड़ाती ठंड में जब बादलों से बर्फ गिरती है तो भी बर्फ के क्रिस्टल, जिन्हें हम स्नोफ्लेक्स कहते हैं, इसी तरह पानी के अणुओं के एक निश्चित पैटर्न में बहुत धीरे धीरे जमने से बनते हैं।
हाँ, प्रकृति के अपने तरीके हैं।
या फिर पृथ्वी की गहराई में देखा जाए, वहां लाखों सालों से अत्यधिक तापमान और दबाव के बीच पिघला हुआ मैग्मा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा है।
बिल्कुल, और उसी से
इसी धीमी प्रक्रिया, इसी प्राकृतिक रिक्रिस्टलाइजेशन के कारण धरती के गर्भ में बेशकीमती रत्न, हीरे और जटिल मिनरल्स अपने शुद्धतम रूप में बनते हैं।
प्रकृति खुद अपनी प्रयोगशाला चला रही है, बस उसका पैमाना बहुत विशाल है और उसका समय चक्र बहुत लंबा है।
रसायन विज्ञान की ये सुंदरता, अणुओं के खुद को व्यवस्थित और शुद्ध करने की ये कला, केवल किसी केमिस्ट्री मैनुअल में नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में हो रही है।
सच में ये विचार बहुत ही प्रेरणादायक है।
इसी विचार के साथ आज का ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं से बस यही कहना है कि अपने आसपास छिपे इस विज्ञान को देखते रहने और नई चीजें सीखते रहने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। मिलेंगे अगले विश्लेषण में।